कुमार यीशु मसीह के नाम की
जय।
हालेलुया,
यीशु मसीह के लिए जरा जोरदार तालियां देंगे। हम सब मिलकर कोर्स गाएंगे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, और उसके बाद खुदा का कलाम सुनेंगे। हम सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। अगर आप अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती हैं, होना चाहते हैं, तो सबको मौका है, आप खड़े हो सकते हैं और खुदा खुदा से बरकत मांगेंगे कि खुदा खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे बरकत दे। आज के कलाम में से जो वाक्य पढ़े वो हम सब के लिए बाएं से बरकत हो। हालेलुया।
जोर हमारा है, फतहा का नारा है, सबसे कहेंगे तेरे पर पे आए हैं, दिलाए हम सब पे कर्म कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे। का शौकी है हालेलुया, मेरे मर्ज का शौकी है, तेरा फजल ही काफी है, मेरी आँख रोती है, अश्रुओं से भी रोती है, मेरी आँख रोती है, अश्रुओं से भी रोती है, मुझे आँख छूने दे, यीशु
जो कुछ तुम ईमान से मेरे बाप से मेरे नाम से मांगो, शक ना करो, यकीन रखो, जो तुम्हारे लिए हो गया है। खुदा तो कलाम की जो बरकत दे चुका है, अब जो बीज बोया जाए तो 100 गुना खुदा खुदा फल आए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। एक एक जिंदगी के लिए हो आज का कलाम, मेरे मुंह से निकलने वाला कलाम खुदा खुदा मेरे लिए हो, मेरी रूहानी तरक्की और खुदा खुदा रहनुमाई का वसीला बने। आज कोई भी जान यहाँ से भूखी और प्यासी ना जाए, बल्कि शराब हो और शेरावर हो, शेर हो और बारावर हो, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आज की शाम मेरे साथ निकालू नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 17वां बाब, हम उसकी 11वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह को देखेंगे कि वो 10 कोढ़ियों को क्या करता है जी, शिफा देता है। और इस वाक्य को हम पढ़ेंगे और उसमें से चंद एक बातों पर गौर करेंगे और उसमें से सीखेंगे। सो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शफा पा गया हूं, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करते हुए लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या दसों पाक साफ ना हुए? फिर वो नौ कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये बड़ा हैरान कुन वाक्या है कि हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह को सामरिया और गलील से होकर जाना था। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, एक और वाक्या हमें मिलता है और उसके अलावा बहुत से और हवाला जात हमें मिलते हैं। आपको याद होगा कि यीशु मसीह जब सामरी औरत से मिला तो उसके बारे में लिखा है 4 बाब यूहन्ना की इंजील में कि उसे सामरिया में से होकर जाना जरूर था। और जब वो सामरिया से गुजरा तो वहां पर उस औरत के दिल के वो तमाम सवाल जो वो बहुत मुद्दत से अपने साथ लिए फिर रही थी, जो कोई भी भेद उसके अपने दिल में दफन था, जो उसे कोई जवाब ना दे पाया, जब यीशु के साथ उसकी गुफ्तगू हुई तो क्या हुआ? उस सामरी औरत के दिल की बातों को और भेदों को क्या करता है जी? यीशु बयान करता है। सो यीशु को सामरिया से होकर जाना जरूर था कि सामरिया के शहर में उस सामरी औरत को क्या दे जी? जवाब दे और उस पर निजात का पैगाम वाजिया करे। और वो पैगाम क्या करता है? वो अपना घड़ा तोड़ती है, वो अपने शहर में जाती है और हर एक को जाकर कहती है कि मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है, यानी कि मसीह जो आने वाला था उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। इसके अलावा हम देखते हैं लूका की इंजील में आगे चलकर 19वें बाब में कि यीशु को यरूशलेम से जाना जरूरी था, और वो क्या करता है? वहां पर छोटे कद वाले ज़कई से मिलता है और वहां पर क्या होती है? उसकी रूहानी रहाई होती है कि वो हर तरह की उस नापाकी से निकलकर क्या करता है? अपने नाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। ज़कई के नाम का मतलब क्या है जी? पाक साफ, पाक, बेऐब। लेकिन वो ऐबों में, गुनाह में, बेईमानी में, हर तरह के मसूल लेने में जिंदगी बसर कर रहा था। और जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई, जब उसने कहा ऐज कई नहीं के उतरा, मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है, तो ज़कई के घर में निजात आ गई। यहां पर जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है पहली ही आयत में, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। यीशु मसीह सही वक्त पर, सही जगह पर, उस वक्त पर क्या होता है जी? मौजूद होता है। यीशु मसीह के घर में हम देख सकते हैं उसके तरीकाकार में, वो कभी भी किसी भी जगह पर बेफायदा नहीं है, बल्कि क्या है जी? खुदा की मर्जी को जाहिर करने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए वक्त पर मौजूद होता है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ यकूब के खत में कि जैसी देर हम समझते हैं वैसी देर नहीं, खुदा के हजूर 1000 साल 1 दिन के बराबर है और 1 दिन 1000 साल के बराबर है। अगर वो इंतजार करता है तो हमारे लिए, अगर वो जल्दी करता है तो हमारे लिए। खुदा की हजूरी में, यीशु मसीह के निजाम में कभी भी देर नहीं होती। हम जिस तरह इंसान सोचते हैं वैसा नहीं है। उसने हर एक चीज का वक्त ठहराया है, वाज की किताब में कहता है। पैदा होने का वक्त है, रोने का वक्त है, सोने का वक्त है, जागने का वक्त है, काम करने का वक्त है। हर जगह पर हर वक्त में जहां कहीं भी यीशु है वहां पर उसका बनाई आलम से पेशदर से वक्त मुकर्रर था। सो यीशु मसीह गांव में से यरूशलेम से हो जाता हुआ क्या करता है, सामरिया और गलील में पहुंचता है और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसे मिलते हैं। 10 कोढ़ी उसे मिलते हैं और क्या लिखा है, और 10 कोढ़ियों ने क्या किया, उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर रहम कर। जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, पुराने अहदनामा के मुताबिक खुदा ने मूसा को जो हुक्म दिया था, कोढ़ियों को क्या किया जाता, यहूदियों में नापाक इंसान गिना जाता था, नापाक इंसान गिना जाता था। और ना सिर्फ कोढ़ी थे बल्कि इसके अलावा और लोगों को भी क्या कहा गया था जी, नापाक कहा गया था। मेरे साथ जरा गिनती की किताब को देखें, गिनती की किताब जब हम उसके 5वें बाब को देखते हैं तो वहां पर खुदा ने मूसा से क्या कहा था, 5वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो हर कोढ़ी को और जेयान के मरीज को और वो जो मुर्दों के मुर्दा के सबब से नापाक हो, ना सिर्फ कोढ़ियों को बल्कि जिनको जेयान की बीमारी थी, और ना सिर्फ जेयान की बीमारी बल्कि जो मुर्दा को छू लेते थे। जब किसी मुर्दे को कोई छू लेता था तो यहूदियत में खुदा के हुक्म के मुताबिक वो क्या हो जाता था जी, नापाक हो जाता था। और इन तीनों में से जो खासल खास हुक्म का वो क्या था, मुर्दा के सबब से नापाक हो, उसको लश्करगाह से बाहर कर दें। अगर किसी को जरियान की बीमारी है, अगर किसी ने किसी मुर्दे को छू लिया है कि वो बंदा मर गया है, तो उसे और खासकर जो कोढ़ी था उनको क्या किया जाता था, शहर से, उस लश्करगाह से जहां पर खुदावन के कबीले मौजूद थे, खुदा की हजूरी मौजूद थी, खुदा का खेमा था, वहां से उनको क्या किया जाता था जी, बाहर किया जाता, क्योंकि खुदा पाक है और उनकी बीमारी उनको क्या करती थी जी, नापाक ठहराती थी। So, यहां पर जब हम देखते हैं ये दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहते हैं, क्योंकि पुराने अहदनामा में हुक्म था। तीसरी याद में जब पढ़ते हैं, ऐसों को ख्वाब वो मर्द हो या औरतें हो, तुम निकाल कर उस उनको लश्करगाह के बाहर रखो ताकि वो उनकी लश्करगाह को जिसके दरमियान मैं रहता हूं नापाक ना करें। चुनाचे बने इसराइल ने ऐसा ही किया और उनको निकाल कर लश्करगाह के बाहर रखा, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था कि बने इसराइल को कहे। सो कोढ़ी शहर से बाहर रहते थे, जैसे हमारी कानूनी या साथ वाले कानूनी को देखते हैं। उस दौर में क्या थी जी, कानूनियों या आबादियों की क्या होती थी जी, हदबंदी की जाती थी और उनका मेन गेट होता था। शहर में आने जाने के मुख्तलिफ दरवाजे होते थे, जैसे कि आज भी यरूशलेम में उसके क्या है जी, 12 गेट हैं और 12 गेट को मुख्तलिफ नाम दिए जाते थे, दिए हुए हैं कि इस गेट पर क्या काम होता है, यहाँ पर क्या काम होता है। जब हम मत्ती को देखते हैं तो वो शहर के दरवाजे पर बैठा क्या ले रहा है जी, महसूल ले रहा है, और यीशु ने उसे देख कर कहा मेरे पीछे हो ले। सो कोढ़ियों को हुक्म था कि शहर के बाहर रहें, और अगर वो शहर में आते या किसी आबादी में जाते तो उनको हुक्म था तो वो क्या कहें, नापाक नापाक नापाक। और लोग देखकर क्या हो जाते थे, उनका रास्ता साफ कर देते थे ताकि कोई उनसे छूने के बायस भी नापाक ना हो जाए। तो यहां पर जब हम देखते हैं, उन्होंने दूर खड़े होकर बलवंत से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर रहम कर। और यीशु मसीह ने उनको जब देखा दूर खड़े, उनकी हालत को देखा, और कोढ़ियों को जब देखते थे उनकी जो जिस्म की चमड़ी थी वो सफेद और सूखी होती थी, उस पर फोड़े बहुत ज्यादा होते थे, और मक्खियों की वजह से, कीड़ों की वजह से कोढ़ी क्या करता था, अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों से, टाकियों से लपेटता था ताकि उसके जख्म जो है जी वो दूसरे जानवर क्या ना करें जी, उस पर काटे ना, बैठे ना और जरासीम ज्यादा ना फैले। सो यीशु ने दूर से उनको देखकर क्या कहा? यीशु ने उनको कहा कि जाओ जाकर अपने तय क्या करो जी, काहिनों को दिखाओ। जब पुराने अदनामा में देखते हैं काहिनों को हिकमत और दनाई खुदा ने दी थी कि वो ना सिर्फ कलाम सुनाएं, ना सिर्फ बाइबल की रस्मों और जिम्मेदारियों को करें, बल्कि उनको ये इलम था कि इस बंदे को बंदी को किसको जरियान है, किसको क्या है जी और बीमारी है और किसको क्या है जी कोढ़ है। वो एक तरह से कह सकते थे हकीम थे, डॉक्टर थे, उनकी डॉक्टरी की जो कह सकते हैं कि जी वो PhD डॉक्टर थे, जो देख कर बता देते थे इसे कौन सी बीमारी है, क्योंकि खुदा ने उनको बताया हुआ था कि इस बीमारी से तुम्हें पता चल जाएगा कि इस बंदे को क्या बीमारी है। तो यीशु ने कहा कि जाकर काहिनों को दिखाओ, क्योंकि काहिन डॉक्टर थे, कि वो देख कर कहें। इन्होंने क्या कहा? तीन बड़ी जबरदस्त बातें कही, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। ये बहुत छोटी दुआ है और इस दुआ का जवाब क्या है जी, चटपट में मिला है। जरूरी है बहुत दफा हम हन्ना की तरह लंबी लंबी दुआ करें और मूसा की तरह लंबी लंबी दुआ करें, लेकिन बहुत दफा हमारी दुआ क्या होनी चाहिए, ऐ यीशु, ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर। क्योंकि वो हमारे हालात से वाकिफ है, वो जानता है कि हमें कौन सी बीमारी और कौन सी मुश्किल है। बहुत दफा हम दुआ नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या कहें। सादा सा कह सकते हैं, मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह माफ कर, मुझे रहाई दे, मुझे शिफा दे। बहुत दफा हम क्या करते हैं जी, सोचते रहते हैं कि मैं कैसे दुआ करूं, इसलिए सिर्फ पादरी साहब के सर पर डाल देते हैं, भाई साहब तुसी मेरे लिए दुआ करो। और जब भाई साहब पूछते हैं कि भाई किस लिए दुआ करनी है, बस एम ही कर दो, सारियां चीजें नहीं कर दो। हमें पता होना चाहिए हमारा मर्ज, हमारी बीमारी, हमारी दरखास्त, हमारी जरूरत क्या है। सुन रहे हो भाई, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। यीशु ने कहा जाओ जाकर काहिनों को दिखाओ। यीशु के कहते ही ये वही कलाम है जिसे इब्तिदा में हम देखते हैं, खुदा ने कहा रोशनी हो जा और हो गई। खुदा ने कहा कि पानी हवा के फिजा के पानी, जमीन के पानी को आसमान के पानी से जुदा किया और कहा कि पहला दिन हुआ और हो गया। जो जो खुदा कहता गया वो होता गया। और ये वही यीशु है जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई भी चीज उसके बगैर पैदा ना हुई। ये यीशु उनको कहता है जाओ जाकर ये करो, जाओ जाकर ये करो। और करना क्या है? अपने आप को काहिनों को दिखाओ, काहिनों को दिखाओ। और लिखा है वो जाते जाते वाक साफ हो गए। ये अजीब मौजजा है कि अभी ना डॉक्टर को दिखाया है, अभी ना कोई काम किया है, जैसे अन्य बर्तलमाई को खुदावन खुदा जो वो कहता है ऐ बेदाद मुझ पर रहम कर, और यीशु मसीह जमीन पर थूकता है, मिट्टी उठाता है, उसकी आंखों पर लगाता है और उसे कहता है शलोम, जा जाकर उस तालाब में जाकर धो ले जो शलोम कहलाता है और जा तेरी बीमारी ठीक हो गई। वो जाता है, वो अपनी आंखें धोता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। उस 38 बरस के बीमार को कहते हैं, देखते हैं उसे, वो पानी का इंतजार कर रहा है कि कब फरिश्ता उतरे, कब ये हो। यहां पर एक अजीब वाक्य है, यीशु कहता है उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और सूबेदार के वाक्य को देखते हैं, उसका मालिक सूबेदार कहता है मेरे नौकर के लिए दुआ कर, मेरे नौकर की शिफा के लिए। वो कहता है यीशु आ और उसे शिफा दे, और यीशु कहता है मैं तेरे साथ चलता हूं। उसने कहा नहीं, तू यहां ही से कह दे तो क्या हो जाएगा जी, शिफा हो जाएगी। सो सारे मौजजात को देखते हैं, ये मौजजा अजीबो गरीब है। कुछ करने को नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है, जाकर इस हुक्म की ताबेदारी करो कि काहिनों को दिखाओ। जाते जाते पाक साफ हो गए। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, दस के दस से शफा पा गए, दस के दस की जिंदगी में मोजजा हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि नौ का क्या बना। इसके बारे में बाइबल में कुछ नहीं बयान करती, लेकिन हम ख्याल कर सकते हैं क्या हुआ, क्यों उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वापस आकर क्या करें, गवाही दें। क्यों आकर क्यों ऐसा हुआ कि नौ का हमें अता पता नहीं मिलता, कहां पर वो गए चले, क्या हो गया उनको, क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया। यीशु भी इस बात पर ताज्जुब कर रहा है। यीशु कहता है फिर उनमें से एक ये देख करके मैं शफा पा गया हूं, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। दस के दस शफा पा गए लेकिन एक लौटा। इसके पीछे हम क्या जवाब निकालेंगे, क्या सोचेंगे, क्या वो नौ शर्माते थे, क्या वो नौ नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, क्या वो नौ नहीं चाहते थे कि इस बड़े काम की गवाही दी जाए। क्या हुआ, हम इस सवाल को अब्दियत में जानेंगे यीशु से, और जब इन दस कोड़ियों को जो नौ हैं उनको मिलेंगे, पूछेंगे कि तुमने क्यों आकर खुदा की तमजीद नहीं की। मेरा सोचना इसके पीछे यह है, हो सकता है वो शर्माते हो सकता है वो घबराते हो सकता है कोई और उनके पीछे सोच चल रही हो, लेकिन हम इस सोच को कभी नहीं जान पाएंगे कि क्यों वो नौ नहीं लौटे लेकिन एक लौटा। और वो क्या है जी, हर उस बंदे और बंदी की क्या है जी, तस्वीर है जो खुदा के किए हुए मौजजात के जवाब में क्या करता है, खुदावन खुदा तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरे नाम को जलाल मिले। और यहां पर इस दसवें बंदे को देखते हैं, वो लौटा तमजीद करते हुए बुलंद आवाज से, हौली हौली भी नहीं, खुदावन तेरी तारीफ हो, नहीं, बुलंद आवाज से लिखा है वो तमजीद करता हुआ लौटा और क्या कहता है, मुंह के बल गिर के यीशु के पांव पर गिरा और उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था, वो सामरी था, सामरी वो नस्ल थी जिसमें यहूदियों और सामरियों ने जब शादियां की तो उनसे सामरी नस्ल पैदा हुई। ये आधे यहूदी कह सकते हैं, आधे सामरी थे। ये सामरी वापस लौटा, वो सामरी औरत गई और जाके गवाही दी, ये सामरी वापस लौटा और गवाही दी। मुझे शक पड़ता है कि ये दूसरे नौ थे, वो यहूदी थे और या फिर उनका कोई और मसला था, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि वो नौ यहूदी क्या है जी, इस बात के घमंड में रहे और उन्होंने अपने तई काहिनों को दिखाना पसंद ना किया और उनका कोई जिक्र नहीं मिलता और ना ही उनकी गवाही लिखी गई है, ना ही उनके बारे में अता पता है कि आगे पीछे का कि उनका क्या बना। लेकिन जिसने गवाही दी उसकी गवाही लिखी गई। इसलिए आज जो सीखने का सबक है वो ये है, मरियम मगदलीनी ने अगर महंगा इत्र खुदावन यीशु मसीह के पांव पर डाला, उसके उसके सर पर डाला, अपने आंखों के आंसुओं से उसके पांव को धोया, अपने बालों से उसे साफ किया और उसके पांव को चूमना ना छोड़ा और वो घर सारा महक गया उसकी अतर की उस खुशबू से, और यीशु ने क्या कहा, जो इसने किया है वो क्या किया जाएगा जी, लिखा जाएगा ताकि इस में जब अंजील की मनादी की जाए तो ये भी पढ़ा जाए। और यहां पर जो अफसोस की बात है कि नौ को मौका था कि उनकी गवाही लिखी जाए कि उनको खुदावन यीशु मसीह ने शफा दी, लेकिन उनका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, लेकिन एक का पता चलता है कि वो सामरी था, वो ऐसे हालात में से गुजर रहा था कि उसने आकर क्या किया, यीशु की गवाही दी और उसका नाम उसकी जात क्या है जी कि किस कबीले से था वो लिख दिया गया कि ये सामरी था। इसमें से जो सबक सीखने का है, अगर हम गवाही नहीं देंगे हमारी गवाही भी आसमान पर, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरी गवाही देने से जमीन पर शर्माओगे तो मैं भी तुम्हारी गवाही देने से अपने बाप के फरिश्तों के सामने कहूंगा मैं इसे नहीं जानता। यहां पर इस सामरी ने क्या दी है, गवाही दी है। हम यसु की गवाही देने से ना शर्माएं जब हमारी जिंदगी में खुदावन खुदा कोई काम करता है बड़े जोश वलवले के साथ खुशी के साथ गाते बजाते हुए क्या कहें गवाही दें बहुत दफा हम गवाही नहीं देते और अगर गवाही देते तो शफा का पता नहीं चलता हुई है या नहीं दुआ का पता नहीं चलता कि जवाब मिला है या नहीं यसु ने जवाब में कहा कि क्या 200 पाक साफ ना हुए फिर वो 9 कहां है यसु इस बात पर ताजब करता है हम भी इस बात पर ताजब करेंगे कि वो कहां है क्या उनका मसला था क्यों वो नहीं आए फिर कह सकते हैं वो खुदगर्ज मगरूर घमंडी थे या फिर वो खुदा को जलाल नहीं देना चाहते थे उसकी गवाही नहीं करना चाहती थी वो अपने आप को खाकसार नहीं करना चाहते थे कि उनके वसीला से लोग कहें कि खुदावन खुदा मौजजात का क्या है जी खुदा है क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते फिर उसने कहा उठ कर चला जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया उनका ईमान उनको शफा दे गया लेकिन उनके ईमान में इतनी कुव्वत नहीं थी कि गवाही देते आज बहुत दफा हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही है हम अपनी गवाही को छुपाएं ना अपनी गवाही को छुपाएं ना बल्कि उसकी गवाही दें सो ये तो जिस्मानी कोड़ के 10 कोड़ी थे जो ठीक किए गए वो हमारे दिलों के कोड़ को जो गुनाह का कोड़ है उसे भी पाक साफ करने की क्या रखता है जी कुव्वत रखता है वो हमारे गुनाहों के कोड़ को पाक साफ करता है जैसे कोड़ी जिस्मानी तौर पर खुदा की हजूरी में खुदा के लोगों के पास खुदा की हैकल में जा नहीं सकता था वैसे ही हम गुनाह के कोड़ के बायस खुदा की हजूरी में जा नहीं सकते थे यीशु मसीह ने अपने खून बहाने के वसीला से जो कोई उस पर ईमान लाएगा उन सब के गुनाह के कोड़ को पाक और साफ कर दिया और उनको कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता और जब कोई यीशु पर ईमान लाता है तो उसके गुनाहों का कोड़ क्या हो जाता है पाक और साफ हो जाता है पाक और साफ हो जाता है इसलिए हमें उसकी गवाही देनी चाहिए चाहे जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो उसने मेरे गुनाहों को माफ किया ये क्या है जी गवाही है सो आज की शाम जो सबक है हमारे लिए 9 कोड़ियों की तरह मौजदा लेकर मौजदा दबाए ना 9 कोड़ियों की तरह अपनी गवाही को छुपाए ना 9 कोड़ियों की तरह ये ना कोई कहे कि भाई क्या हुआ उनका वो कहां गए उनके लिए दुआएं की गई रोजा रखा गया उनके लिए ये किया गया क्या बना उनका कोई पता नहीं और जिनके लिए मौजजा हुआ वो आते हैं कोई लड्डू लेकर आ रहा है कोई केक लेकर आ रहा है कोई हदिया लेकर आ रहा है कोई शुक्रगुजारी लेकर आ रहा है कोई नारे मारता हुआ आ रहा है और कह रहा है कि यीशु ने मेरे लिए ये काम किया है अगर आपकी जिंदगी में कोई गवाही है तो जरूर उसे शेयर करें शर्माए ना सादा जी गल यीशु ने मेरे लिए यह काम किया भाई मुबारक की बीवी मुझे याद है जब उनके बेटी होने वाली थी जैसिका जिसका नाम क्रिस ने रखा डॉक्टरों ने उनको बहुत सी बातें कही कि तुम्हारे पेट में रसौली है या बच्चे को बचा लो या माँ को बचा लो और उन्होंने क्या करना शुरू कर दी चर्च में आकर कहना शुरू कर दिया जी हमारे लिए दुआ करें हमें समझ नहीं आ रही और जब उनके लिए दुआ शुरू हो गई तो पहली दफा जब दुआ करने के बाद अम्मी उसको लेकर गई नर्स के पास और उसका जो वो क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करवाए जो इतनी बड़ी रसौली थी वो इतनी रह गई और अगली दफा जब दुआ करते रहे तो आने वाले 2 हफ्तों में वो रसौली जाती रही और उसको खुदा ने बेटी दी और उस बेटी का नाम जैसिका रखा जिसका मतलब है खुदा की तरफ से तोहफा और वो आज माँ भी और बाप भी और बच्ची भी दोनों क्या है जी जिंदा है और उन्होंने जब डॉक्टर ने पूछा कि तुमने क्या खाया क्या किया और उस सीधी औरत ने क्या कहा यसु ने सामने शफा दी, यसु ने मेरी रसौली को ठीक कर दिया और मुझे क्या दे रही है जी, शफा दे रही मेरे लिए, ये मुजजा किया है। उसने अपनी गवाही को छुपाया नहीं, हम भी अपनी अपनी गवाही को ना छुपाएं। जब दुआ करवाते हैं कि जी हाँ जी दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और जब जवाब आता है तो बहुत दफा जवाब देने के लिए, गवाही देने के लिए वापस नहीं आते। इसलिए यीशु के किए हुए मौजदात की गवाही दें, क्योंकि उसकी की हुई मेहरबानियां आपकी जिंदगी में लोगों के लिए क्या है जी, हौसला अफजाई है। सो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं, यीशु की गवाही से ना शर्माएं, क्योंकि वो ना सिर्फ जिस्मानी कोड़ियों को बल्कि रूहानी कोर से भी क्या करता है, पाक और साफ करता है, ताकि उसके लिए गवाही हो कि वो ना सिर्फ मुर्दे जिंदा करता है, ना सिर्फ लंगड़े चढ़ाता है, ना सिर्फ अंधों को आंखें देता है, बल्कि जिनके दिल पत्थर के हो उनको गोश्तन दिल बना कर क्या करता है, नए मखलूक बनाता है। खुदा खुदा तेरे हुजूर आता हूँ, मिन्नत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज की शाम अगर कोई बीमार है, इस भाई की हड्डी में जो रेशा है, यीशु मसीह के नाम में वो रेशा खुदा खुदा शफा और खुदा खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए हड्डी में से रेशा जाता रहे और खुदा खुदा उसकी हड्डी को शफा हो और खुदा उसकी हड्डी मुकम्मल तौर पर ठीक हो, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। भाई खुदावंद मुनीर के लिए, उसके सारे मुद्दे की सोच के लिए खुदा खुदा उसके सारे बदन पर तेरे पूर्व यीशु मसीह का लहू चाहता हूँ, छू बरकत दे। और आज की शाम खुदा खुदा जो कोई भी किसी किस्म की बीमारी मुश्किल परेशानी में है, अपना हाथ बढ़ा और खुदा खुदा शिफा जारी कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने अपनी कुदरत के काम को जारी किया, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।